कहानी चल रही थी 13 मई 1968 दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि पहले पहले तो एक की ही पूजा करते थे, अभी तो 5 भूतों के बनाए हुए शरीरों की भी पूजा करते रहते हैं, चैतन्य की भी करते हैं तो जड़ की भी पूजा करते हैं, 5 तत्व के बनाए हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंचे समझते और पूजते रहते हैं। अब देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण ही हाथ लगा सकते हैं, और तो कोई हाथ लगाए भी नहीं सकते। ये भी एक भक्ति मार्ग की परंपरा है बुद्ध रूपी हाथ का स्पर्श देवात्माओं को ही हो सकता है, जो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम 84 जन्म लेने वाली बनती है, सतयुग के आदि काल में जन्म लेती है, नहीं तो भूत प्रेत आत्माएं पकड़ में आ जाती हैं बुद्ध रूपी हाथ में, हाथ बुद्ध रूपी उनके साथ लग जाता है, देव आत्माओं के साथ नहीं लग सकता। तो ये परंपरा है भक्ति मार्ग, यादगार है संगमयुगी तुम्हारी यादगार की, कि देवताओं को सिर्फ ब्राह्मण ही हाथ लगा सकते हैं। अभी तो तुम्हारे ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, ये बाप बैठ बतलाते हैं। एक ही बात सुनेंगे, हाँ तुम्हारी बात सही है, दूसरे की सुनेंगे, हाँ ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अभी ऐसे ही चल रहा है। और तो और इसने भी ढेर गुरु किए हैं, किसने, जो सृष्टि का पहला पत्ता है उसने भी बहुत गुरु किए हैं। कहते हैं हमने भी सभी कुछ किया, भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि, नाक कान मूंदना घंट बजाना, ये सभी कुछ हमने किया। आखिरी में ये सभी कुछ छोड़ देना पड़ा। वो भक्ति मार्ग के धंधे करें या ये धंधा बैठ करें, पिन की आती रहती थी, माना झुटका आता रहता था, तंग हो जाता था। पुराने नियम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है, आधा कल्प भक्ति मार्ग में थी, अभी मालूम पड़ता है कि बाबा तो है बिल्कुल एक्यूरेट बतलाते हैं। वो तो कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है, अब ये परंपराएं कहां से शुरू होती हैं? इनका फाउंडेशन कहां पड़ता है? अभी संगम युग में सब प्रकार की भक्ति मार्ग की परंपराओं का फाउंडेशन पड़ता है। जो भगवान बाप को कांस्टेंटली नहीं पहचान पाते, वो फिर भक्ति मार्गीय रावण के 10 सिरों की मत पर चल पड़ते हैं। वास्तव में सतयुग में भक्ति कहां से आई? हो ही नहीं सकती। वहां ये बातें कहां से आई? मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, मूढ़मति है, मूल बुद्धि को बंदर बुद्धि जनावर बुद्धि कहा जाता है। कोई को कहते भी हैं तुम मकना हाथी हो उल्लू हो, अब सतयुग में तो ऐसे अक्षर नहीं कहेंगे। बाप आकर रचयिता और रचना का भी परिचय देते हैं, कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ और शरीर भी उनका लेता हूँ। किनका है? कौन शरीर लेता है उनका? बाप की बात हो रही है। जो बाप आकर रचयिता और रचना का परिचय देते हैं वो बाप शरीर भी उनका लेता है। किनका? उनका शरीर लेता है जो अपने जन्मों को भी नहीं जानते। जो अपने जन्मों को नहीं जानते वो ही नंबर वन में था, फिर 84 जन्म लेकर पतित बना। नंबर वन जो सुंदर था वो ही फिर काला बन गया है। कौन नंबर वन सुंदर था? और नंबर दो में सुंदर कौन था? संगम ही कृष्ण नंबर वन सुंदर था या सतयुग में जन्म लेने वाला कृष्ण नंबर वन सुंदर था? संगमयुगी कैसे पता? क्योंकि उसका ही शास्त्रों में गायन है श्याम सो सुंदर। सतयुगी कृष्ण का तो शास्त्रों में कोई गायन ही नहीं है। हम जानते हैं आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ अभी मैं उनमें बैठा हूँ। क्या सिखलाने के लिए बैठा हूँ? है इस शरीर में प्रवेश करता हूँ मैं उनमें बैठा हूँ। कब की बात है? 68 की बात है। अच्छा क्या सिखलाने बैठा हूँ? जीते जी मरना सिखलाने के लिए बैठा हूँ। तो जिस तन में बैठा हूँ उसके द्वारा जीते जी मरने की स्टेज में कोई आया है? तो फिर एम ऑब्जेक्ट तो बेकार हो गई। अभी बाप कहते हैं इस दुनिया से तो मरना ही है, अभी तुमको पवित्र होकर के मरना है। क्या कहा? इनको नहीं, किनको? ब्रह्मा को पूरा पवित्र होकर के नहीं मरना है। अगर आत्मा पूरी पवित्र हो जाए तो सूक्ष्म शरीर के बंधन में आवेगी नहीं आवेगी? परंतु तुमको, इनको तो संपूर्ण पवित्र बन करके नहीं शरीर छोड़ना है, तुमको, तुमको तो पवित्र होकर के मरना है। मेरा पार्टी है पावन बनाने का। तुम भारतवासी बुलाते ही हो पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि हे लिबरेटर आओ। दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ, تم کو 100% دکھ کی دنیا سے چھڑایا دیتے ہیں. سبھی مکتی دھام چلے جائیں گے. جہاں جانے کے لیے سنیاسی آج ماتھا کوٹتے ہیں. تم پرشارتھ کرتے ہو سکھ دھام کے لیے, اس سکھ دھام میں جانے کا پرشارتھ کرنا ہے پروتی مارگ والوں کے لیے. سکھ دھام کی دنیا میں نوتی مارگ والے جا نہیں سکتے. تم جانتے ہو ہم پروتی مارگ والے تھے, ابھی پھر آپ پوتر بنے ہیں. پروتی مارگ والوں کا کام نوتی مارگ والے نہیں کر سکتے. یگیا تپ دان آدی یہ سبھی پروتی مارگ والے کرتے ہیں. وہ لوگ تو گھر بار چھوڑ کر کے جنگل میں جاتے تھے. تیرہ مئی 1968 کی وانی کا تیسرا پیج. انہوں کو تو تیرتھ آدی کرنے کا بھی ادھیکار نہیں ہے. وہ تو جانتے ہیں ہم برہم ہیں ایشور ہے. برہم مہتتو کو یاد کرتے ہیں. ان کو تو برہم گیانی تتو گیانی کہا جاتا ہے. تو جڑتو کا گیان کرنے والے ہوئے نا برہم گیانی. ارتھات ان کی پہنچ برہما تک ہے. جڑتمئی بدھی تک ان کی پہنچ ہے. اس سے اوپر ان کی بدھی نہیں جا سکتی. اور دوسروں کو گیان بھی دیں گے تو برہم میں لین ہونے کا, اتوا تو کہو برہما کی یاد میں لین ہو جاؤ. اور یاد بھی برہم کو ہی کریں گے. یہاں شوٹنگ کرتے ہیں برہما کو یاد کرنے کی. جب ستو پردھان تھے تو ان میں طاقت تھی. یگ کے آدھ میں بھی ان میں طاقت تھی. پیچھے گرتے آئے ہیں. ابھی تو دیکھو یہاں آ کر کے گرو بن کر کے بیٹھے ہیں. شہروں میں گھس پڑے ہیں اور تمہاری کتنی انسلٹ کرتے ہیں. استری کو تو جیتے جی ودھوا بنائے دیتے, بچوں کو آرفن بنائے دیتے. یہ بھی جانتے ہو راون نے ساری دنیا کو نردھن کا بنائے دیا ہے. کیوں بنائے دیا ہے؟ کیونکہ ساری دنیا دھنی باپ کو بھول گئی. ابھی تم فیل کرتے ہو. ابھی ہم تو سبھی کو جانتے ہیں. کیونکہ شیو بابا ہم کو گھر بیٹھے پڑھائے رہے ہیں. یہ بے حد کا باپ سکھ دینے والا ہے بے حد کا. اور اس بے حد کے باپ سے تم بہت سمے کے بعد ملتے ہو. اس کی نشانی ہے کہ جب تم بہت سمے کے بعد ان سے ملتے ہو تو تم کو پریم کے آنسو آ جاتے ہیں. بابا کہنے سے ہی رومانچ کھڑی ہو جاتی ہے. او ہو بابا آیا ہوا ہے ہم بچوں کی سروس میں. بابا ہم کو اس پڑھائی سے گل گل بناتے ہیں. اس گندی چھی چھی دنیا سے ہم کو لے جائیں گے اپنے ساتھ. भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आवेंगे तो हम बाहर ही जावेंगे, आपका ही बनेंगे और कोई की नहीं सुनेंगे। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, अब नंबरवार तो होते ही है, भक्ति मार्ग में भी नंबरवार होते हैं, सभी का अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं, आज भी बच्ची ने देखा बाबा कहीं चला जाता है तो रोने लग पड़ी। आगे विदाई देने के लिए यहाँ हाल में आते थे, एक दो को देख करके सभी को रोना आ जाता था। फिर भक्ति मार्ग में ये भी सभी रस्म निकाल दी। अभी तो कहते हैं फॉल इन लाइन, मिलिट्री के मुआफिक हो जाओ, ये तुम्हारी मेले रूहानी मिलिट्री है। सत्युग में तो रोने का नाम ही नहीं होता है, यहां तो तुम कितना रोते हो। जब स्वर्ग में गया तो रोना क्यों चाहिए, और ही बाजा बजाना चाहिए, और वहां तो बजते ही हैं बाजे। तमो प्रधान शरीर खुशी से छोड़ देते हैं, ये रसम भी शुरू यहां से ही होती है। यहां तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, और वहां तो समझते हैं पुनर्जन्म लेना है, तो बाप सभी बातें समझाए देते हैं। ये भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, तुम भ्रमरी मिसल परिवार में भूं भूं करती रहती हो, तुम तो ब्राह्मणिया हो ना, घर गृहस्थ में परिवार में रहते हुए विष्टा के कीड़ों को भूं भूं करती रहती हो। वो सन्यासी आदि क्या जाने इन बातों को, वो तो जो सुनाते हैं सत्य तो होता नहीं। तो बाप कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, इनका भी अर्थ नहीं समझते हैं। क्या अर्थ है इसका, जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूँ। बड़े से बड़ी धर्म की ग्लानी क्या होती है, बाप सर्वव्यापी बताए देते हैं, बताते ही नहीं है समझते भी हैं। अभी धर्म की ग्लानी है या नहीं है, है? है, बाहर की दुनिया में है, बीके की दुनिया में है, या एडवांस की दुनिया में भी है, है? अरे बाप सर्वव्यापी है कि सदा काल एक व्यापी है, अपने अपने दिल से पूछो। सदा काल एक व्यापी है, अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं, ऐसे नहीं आया करके चला गया हूं। मनुष्य विचारों को तो ज्ञान है ही नहीं, मनुष्यों को तो जो सुनाओ सो सत्य सत्य करते रहेंगे। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में सुन सुन करके मनुष्य कितना खुश होते हैं। तुमको तो बाप कहते हैं ये तो सुनना ही नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग का भूसा है, इस भूसे को छोड़ देना है, इस शरीर को भी छोड़ देना है। अभी तुमको जीते जी मरना है। बाप कहते हैं इसके लिए अपन को आत्मा समझो, क्योंकि अभी हमको वापस जाना है। शरीर तो वापस नहीं जावेगा, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस देह को भूल जाओ। बाप तो बहुत ही मीठा है, कहते मैं तो तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तो अभी सुखधाम और शांति धाम को याद करो। अलफ और बे, ये है सुखधाम, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। यहाँ हमने पाठ बजाया, अभी पाठ बजाकर हमको घर वापस जाना है। वहां ये छी छी शरीर नहीं ले जावेंगे, अभी तो ये बिल्कुल ही जर्जरी भूत शरीर हो गया है। अभी हमको तो बाप सन्मुख सिखलाते हैं, और इशारे में हर बात समझाते हैं। मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, मैं शरीर से अलग हो करके तुमको वह सिखलाता हूँ। तुम भी अपन को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, यहाँ तो नहीं रहने का है, ये भी जानते हो कि विनाश तो होना ही है, और विनाश भी ऐसा भयंकर होगा कि भारत में तो रक्त की नदियां बहेंगी। इसका कारण क्या है कि भारत में ही रक्त की नदियां बहती हैं और कोई देश में नहीं? दुनिया में देश तो बहुत है, क्योंकि यहाँ अनेक धर्मों का टक्कर हुआ पड़ा है। और इतने धर्म और किसी देश में फैले हुए नहीं है जितना परसेंटेज में भारत में अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक मत मतांतर फैले हुए हैं। यहाँ सभी धर्म वाले इकट्ठे हैं। ये सभी आपस में लड़ मरेंगे, इसकी शूटिंग कौन करते हैं? है हम ही ब्राह्मण, हम भी लड़ मारेंगे। है अरे और धर्मों की शूटिंग कौन करेंगे जो आपस में लड़ मारेंगे? है
यादव
और कौरव आपस में लड़ मरे, पांडव तो आपस में लड़ते ही नहीं। आपस में तो क्या कोई से भी नहीं लड़ते हैं, लड़ते वो हैं जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता है। ये पिछाड़ी का मौत है, आगे पाकिस्तान में क्या क्या हुआ था, वो कोई पिछाड़ी का मौत नहीं था। वो तो छोटी सी चिंगारी थी, उनको खून करने लगे, वह उनको करने लगे। पाकिस्तान की वह बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी तुमको तो बाबा पहले से मजबूत बनाए रहे हैं कि सुन सुन के कान कच्चे हो रहे हैं। या ये सोचते हैं इससे पहले ही हमारा शरीर छूट जाए। अभी बाप तुम्हारे शरीर का भान ही निकाल लेते हैं, परंतु बाबा ने देखा कि बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमजोर है, इसलिए सेवा भी बढ़ती नहीं है। घड़ी घड़ी लिखते हैं बाबा, हम भूल जाते हैं, हमारी बुद्धि टिकती नहीं है। बाबा कहते ये योग अक्षर छोड़ दो, तुम विश्व की बादशाही लेने वाले बाप को भूल जाते हो। थप्पड़ मारो अपने को। आगे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ चली जाती थी तो अपन को चुनरी पहनते थे, ऐसे भी बहुत करते हैं। बाप तो समझाते हैं तुम बच्चे आत्मा अविनाशी हो, चिकुटी पहनना नकोटना। तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। परमात्मा बाप को कहा जाता है। सन्यासियों को तुम पवित्र समझते थे, तब तो उनको माथा टेकते थे। बाप समझाते हैं तुम जो भी गुरु करते हो वास्तव में किसको भी करना नहीं चाहिए। क्योंकि ये गुरु तो तुमको विधवा बनाए देते हैं। 13 मई 1968 की वाणी का चौथा पेज। अभी बाप आकर तुमको इनकी जंजीरों से छुड़ाते हैं। ये तुम्हारी हमजिंस को आरफन बनाए देते हैं। आरफन किसको कहा जाता है? जो कोई के कंट्रोल में नहीं रहते उनको कहा जाता है आरफन, जिनका कोई धनी दोरी नहीं होता। वो तो घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। अब बाप गया तो घर निर्धन का हो गया, कोई संभालने वाला नहीं। कहते भी है ना, तुम लड़ते क्यों हो, क्या कोई धनी धोरी नहीं है? अब ये है कहां की बात, ये शूटिंग कहां होती है? यही माने कहीं बाहर की दुनिया में, तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया में या एडवांस की दुनिया में? तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग होती है कि धनी धोरी कोई नहीं रहता। देखो वो तो समझते हैं ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, अभी साकार में तो कोई धनी धोरी है ही नहीं, और यहाँ एडवांस में, एडवांस में तो उनके भी बाप बैठे हुए हैं। ابھی ساری دنیا میں لڑائی جھگڑا ہونے والا ہے, سب نردھن کے بن پڑے ہیں. ایسے کیوں بولا؟ سب نردھن کے بن پڑے ہیں, مانا سب کی بدھی میں باپ سرویاپی ہو گیا کیا؟ سدا کال نشچے بدھی نہیں رہ پاتے. تو بولا سب ندھن کے بن پڑے ہیں, باپ آ کر دھنی کا بناتے ہیں, تو ساری راجائی تم کو مل جاتی ہے. سچی کمائی ہوتی ہے, پھر ہم جھوٹی کمائی کو کیا کریں گے؟ اس لیے اس کو ایکسچینج کرنا بہادری کی بات ہے. اس کو ارے جو بھی جھوٹی کمائی کر رہے ہیں اس سمے کوڑیوں کی, وہ جھوٹی کمائی کرنا بہادری کی بات ہے کہ بوگس بات ہے؟ تو بوگس بات ہے. ابھی باپ آیا ہوا ہے گیان رتنوں کا دھندا کرانے کے لیے, تو ایکسچینج کر لینا چاہیے. اس دنیا داری کے دھندوں سے اپنی بدھی کو سمیٹ لینا چاہیے, کر کے دکھانا ہے. باپ کہتے ہم نے یہ کر کے دکھایا نا. کون کہتے ہیں؟ ارے یہ بات کون کہتے ہیں؟ باپ کہتے ہیں یا اما کہتی ہے؟ باپ دادا دونوں کہتے ہیں. دادا نے اگر کہا ہوتا تو سوکشم شریر کے بندھن میں نہیں بندھتا. بدھی کہاں لٹک گئی ہے؟ کس میں پرویش کرنا شروع کر دیا؟ کیوں ایسا ہوا؟ گھر پریوار میں بدھی لٹک جاتی ہے. تو باپ کہتے ہم نے ایسا کر کے دکھایا, ابھی تو بس ہم یہی سودا کرتے ہیں. بچوں کو نمت بنا کر کے سبھی کچھ دے دیا, ابھی یہ تم سنبھالو, پالنا کرو. تب کی بات ہے, یگ کے آدھی کی بات ہے. الف کو ملا اللہ, بے بادشاہی ساری باغیدار کو دے دی, بچوں کو نمت بنائی دیا. بچوں میں پہلا نمبر کا بچہ کون؟ برہما بابا. بس بدھی میں آ گیا ہم تو یہ سودا کرتا ہوں. سبھی کچھ دے دیا, یہ بھی تم سنبھالو پالنا کرو. جن کی بھٹی بنی ان کے حوالے کر دیا. شاستروں میں تو جھوٹی باتیں ڈال دی ہیں. کرشن کو اتنا پیار بھی کرتے ہیں, بیکنٹھ کا پرنس بھی کہتے ہیں, پھر وہاں کنسی ذرا سندھی کہاں سے آویں گے بیکنٹھ میں؟ کہاں کی باتیں ہیں؟ یہ تو سنگم یگ کی باتیں ہیں, جہاں کرشن کے ساتھ پریکٹیکل میں کنسی ذرا سندھی ششوپال بھی ہوتے ہیں. کتنی گالیاں دیتے ہیں. ابھی منشی تو بے سمجھ ہیں. یہ تو بڑا بابا ہے, چھوٹا بابا کون ہے؟ یہ بڑا بابا بیٹھ بچوں کو سمجھاتے ہیں, تو چھوٹا بابا کیا کرتے ہیں؟ वो तो सुनाते हैं और सुनते हैं। तुम बच्चे कल क्या करते थे, आज क्या बन गए हो? अभी बच्चों को लज्जा आती है। बाबा तो सच कहते हैं, अभी बाप आया है तो उनको याद करना है, दैवी गुण धारण करना है, प्रजा भी बनानी है, इसलिए बाप पूछते रहते हैं। जो मास दो मास सर्विस करने के लिए तैयार हैं वो अपना नाम भेज देवे, अभी ऐसी सर्विस करने वाले बच्चों की जरूरत है। ये रूहानी सोशल वर्कर्स हैं, दुनिया में वो जिस्मानी सोशल वर्कर्स तो बहुत होते हैं। अभी कौन सी सेवा करनी है? अभी रूहानी सोशल वर्कर की वंदने की शोभा की सेवा करनी है। जो सर्विस के लिए तैयार हो वो बाबा को लिख करके भेज देवे तो उनके लिए बड़े बड़े सेंटर खोल देंगे। जितना जितना आप सामान बनाएंगे तो तुम्हारी प्रजा बनती जाएगी। एक एक राजा को फॉलो करने वाली कितनी प्रजा होती है? लाखों की तादाद में प्रजा होती है। राजा इशारा करता है और विरोधी राजाओं के सामने लड़ मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी भी देखो, कोई तो प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे, ब्लड से लेकर दे देते हैं। बाप कहते हैं ये युद्ध का मैदान है, तुम याद करेंगे। माया बुद्धि योग अपनी तरफ लगाई लेती है। बाप तो कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी बल करो। बल क्यों लगा दिए हैं? धंधा आदि भी बल करो, काम काज करते धंधा आदि करते बुद्धि का योग वहां लगाओ। जैसे आशुक माशुक का मिसाल होता है, एक दुख को देख करके खुश होते रहेंगे। और तुम तो आशुक हो बहुत पुराने, भक्ति मार्ग में भी तुम पूजा करते थे, याद करते थे। तो कहते हैं मैं अभी सन्मुख आया हुआ हूं। भक्ति मार्ग में तुम जिस पुराने आशुक को याद करते थे, मासुक को याद करते थे, वो सन्मुख में था क्या? वो मूर्ति में समझते थे, ये तो इनडायरेक्ट याद करना हुआ। अभी तो मैं सन्मुख आया हुआ हूं। ब्रह्मा के प्लान अनुसार कल पहले मिसल तुम बच्चों के पास आया हूं और साधारण तन में आया हुआ हूं, इसलिए गोरा और सांवरा कहते हैं। सांवरा कौन से तन को कहते हैं? साधारण तन को कहते हैं या असाधारण तन को कहते हैं? साधारण तन को सांवरा कहते हैं। और असाधारण जब योग युक्त स्टेज बन जाती है तो कैसा बन जाता है? रूप बसंत की जोड़ी बन जाती है। अभी भी निशानियां हैं। राम को भी काला क्यों बनाया है? नारायण को भी कहां गोरा कहां काला दिखाते हैं? अभी उनका भी अर्थ बाप ने समझाई दिया है। کیا سمجھایا ہے؟ پرسارتھی جیون جب تک ہے تب تک کالا ہے، اور پرسارتھ پریپورن اسٹیج کو پہنچ جاوے گا تو گورا بن جاتا ہے. کسی کی بدھی میں ابھی یہ باتیں آویں گی نہیں، کیونکہ سبھی کام شکشا پر بیٹھ کر کے کالے ہو گئے ہیں. جگن ناتھ کے مندر میں بہت اچھی سمجھانی ہے، اوپر میں دکھایا ہے دیوتائیں بام مارگ میں گئے. کہاں دکھایا ہے؟ اوپر میں کیوں دکھایا ہے؟ نیچے کیوں نہیں دکھایا؟ سمپورن ہونے کے بعد وہ نشانی نہیں دکھائی گئی ہے دیوتاؤں کے بام مارگ میں جانے کی. سمپورن میں چلے ہو، سمپورن بن جائیں گے تو بام مارگ میں جائیں گے کیا؟ بام مارگ مانے الٹا مارگ، اسے کہتے ہیں بام. یہ ہے دایاں، الٹے مارگ میں نہیں، ستیگ میں تو سیدھا راستہ ہوتا ہے. بیبیچاری راستہ آپ نہیں اپنا نہیں اپناتے ہیں. تو اوپر میں جو وام مارگ میں دکھایا گیا ہے وہ اونچی اسٹیج کے پرسارتھ کی نشانی ہے، پرنتو سمپورن نہیں بنے ہیں. گھڑی میں اونچے اور گھڑی میں پرسارتھ نیچے ہوتا رہتا ہے. جیسے جھولا جھولتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے؟ گھڑی میں اوپر اور گھڑی میں نیچے آ جاتے ہیں. تو چتر بھی کالے بنائے دیے ہیں. ابھی تم ان باتوں کو سمجھ گئے ہو. وہ تو سمجھتے ہیں کرشن سدائو ہے ہی ہے، کرشن کو بھگوان سمجھ لیتے ہیں. جدھر دیکھو کرشن ہی کرشن ہے. اس کی شوٹنگ بھی کون کرتے ہیں؟ جدھر دیکھو کرشن ہی کرشن ہے، اس بات کی شوٹنگ کون کرتے ہیں؟ ارے تتھاکتت براہمن ہی اس بات کی شوٹنگ کرتے ہیں. جو برہما بابا میں کرشن کی سول کو سمپن روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی تم کو تو ساری دنیا بھول کر کے اپنا گھر اور راجدھانی یاد پڑتی ہے. الف اللہ اور بے بادشاہی، یہ چکر دیکھو کیسے پھرتا ہے. کلپ کی آیو کتنی ہے تم تو جانتے ہو. دیوی دیوتائیں بھی یہ باتیں نہیں جانتے تھے. منشی تو لاکھوں ورس کہہ دیتے ہیں. اب لاکھوں ورس ورکش کی آیو تھوڑے ہی ہوتی ہے. بھلے بڑے ورکش کی آیو سب سے بڑی ہوتی ہے، تو سستی ورکش کا مثال کون سے ورکش سے دیا جاتا ہے؟ بڑ کے جار سے دیا جاتا ہے. بچوں کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ وید کا بابا، بڑے سے بڑا بابا ہم کو پڑھاتے ہیں. جن کی یادگار میں بر بچے کی نشانی دکھاتے ہیں. ابھی تم نے دھوبی کو بلایا ہے، ہماری آتما کو شدھ کرو. آتما شدھ بن جائے گی تو شریر بھی شدھ ملے گا. تو سارے وشو کو کتنا شدھ بنائی دیتے ہیں. आत्मा की धुलाई करते हैं कि सारी दुनिया की धुलाई होती है? आत्मा की धुलाई होती है, सारे विश्व की धुलाई नहीं होती है? दो भी कपड़े की धुलाई करता है तो ऊपर नीचे कर देता है ना, है? कपड़े को ऊपर नीचे कर देता है ना। तो नई दुनिया जब बनेगी तो सारी दुनिया में आड़ोलन होगा या नहीं होगा? बहुत बड़ा आड़ोलन होगा। तो सारे विश्व को शुद्ध बनाए देते, ये रूहानी धोबी है। आजकल तो कपड़े धोने के लिए मशीन भी निकली है, कितना कपड़ों को ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हैं। ये बाबा धोबी भी है तो बैरिस्टर भी है। सुनार भी है, ये सभी कुछ है। कौन है? बाबा। ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे पर न लागू होती हो। गायन भी है तुम मात पिता बंधु आदि, वो सभी कुछ है। 21 जन्म के लिए कितना सुख देती है। बाकी तो सभी दुख ही देने वाले हैं। नंबर वन दुख है कौन सा? काम कटारी का। इस काम कटारी के पीछे पैसे आदि भी लूट करके मार देते हैं। तन भी लूटा और धन भी लूटा और फिर मार भी देते हैं। पैसे के लिए तो कितनी मारामारी होती है। अभी तो बाप तुम्हारी 21 जन्मों के लिए झोली भर देते हैं, वहां कोई प्रकार की मारामारी नहीं होगी। ऐसी झोली भरते हैं जो कोई छीन न सके। तो तुम्हारी बात बुद्धि में आती है ना, फिर इतनी खुशी भी होनी चाहिए। हम सीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। क्या ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि राजधानी हम स्थापन करने वाले हैं? बुद्धि में क्या होना चाहिए? हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप मिला हुआ है, हम उसकी मत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो अपन से पूछते रहो हम क्या बनेंगे राजधानी में। अपनी अवस्था से अपना पद समझ सकते हो, फिर समझ करके पुरुषार्थ करना है। बच्चों को समझाते तो बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।